तो कृष्ण लीला के गान का बहुत सुंदर अवसर मिला। वो दही मथ रहे थे, चला रहे थे और गान कर रहे थे, देह को और श्रृंगार को भूल चुके थे, इतना तन्मय थे उस सेवा में, देह की शुद्धि नहीं थी और देह पर स्थित श्रृंगार की शुद्धि नहीं थी, वो गा रहे थे इस तरह से। तो दही मथती हुई यशोदा का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिव्रती सूत्रनद्धम् पुत्र स्नेह स्मृत कुच युगम जातकंपम च शुभ्रुः रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कंकड़ौ कुंडले च स्विन्नम वक्त्रम कबर विगलन मालती निर्ममंथ। मां यशोदा रेशमी लहंगा पहने थे, लहंगा समझते हैं एक बहुत बड़ी साड़ी होती है, इधर ब्रज की स्त्रियां राजस्थान की स्त्रियां पहनती हैं, रेशमी वस्त्र पहने थे। पृथुकटी तटे क्षौमं वासः बिभ्रति, माँ यशोदा के नितंब बड़े बड़े थे और उस पर कटी तट पर वह क्षौमं वासः रेशमी वस्त्र पहनी थी, बिभ्रति सूत्र नद्धम, और उस लहंगा के ऊपर वह करधनी बांधी थी। सूत्र नद्ध, नद्ध का अर्थ होता है बद्ध, करधनी चौड़ी सोने का बेल्ट था उसको बांधी थी लहंगा के ऊपर। पुत्र स्नेह स्मृत कुछ जुगम, और जो दही मथ रहे थे कृष्ण की लीला गा रहे थे तो उसके स्तन से दूध झर रहा था, दोनों स्तन से दूध झर रहा था। क्यों? पुत्र स्नेह स्नुत, पुत्र के स्नेह के आधिक्य के कारण स्नुत दूध चू रहे। देखिए इस तरह से मन भगवान के लीला में लगा हुआ है, चिंतन में, और वाणी से कृष्ण का गान कर रही है, शरीर सेवा में लगा है, और शरीर में भी शरीर का एक एक अंग कृष्णमय है, कृष्ण प्रीतिमय स्नेहमय है, दूध चू रहा है, दूध चू रहा है। तो माँ यशोदा के कंचुकी के भीतर जो स्तन है उन स्तनों से दूध चू करके और कंचुकी को भींगो दिया है, सुखदेव गोस्वामी इस तरह से वर्णन करते हैं। तो दूध क्यों चू रहे हैं, दूध क्यों चू रहा है? एक भक्त कहते हैं कि माँ के स्तन के दूध घबरा रहे हैं कि माँ आज ऐसा माखन निकालने जा रही है कि कृष्ण माखन खा लेंगे तो मैं तो बेकार रह जाऊंगा, हमको नहीं पिएंगे। तो दूध बाहर आ रहे, मानो माँ को याद दिला रहे हैं कि हम तो हैं ही, माखन की क्या जरूरत, हमको पीते हैं कृष्ण, जैसे रोज पीते थे वैसे पिएंगे। माखन खाना है तो दूसरे के घर में चोरी से खाए चाहे जैसे खाने दो, लेकिन हमको तो पिलाओ, माँ के छाती के दूध, ये सोच रहे थे। इसलिए बारम्बार वे द्वार पर आ रहे थे माँ में स्नेह दया उत्पन्न करने के लिए। तो पुत्र स्नेह स्नुत कुछ जुगम, दोनों कुछ दोनों स्तन छरित हो रहे थे अतिशय वात्सल्य भाव के कारण, जात कंपम, दोनों कांप रहे थे स्तन जब ऐसे चला रहे थे रस्सी मंथन दंड में, तो स्तन कांप रहे थे। यहाँ कांपने का भी भाव है कि वे स्तन सोच रहे थे कि इतने दिन तक तो कृष्ण पिए लेकिन अब हमारी उपेक्षा करने लगेंगे, शायद इसलिए वे कांप रहे हैं। कांप तो इसलिए भी रहे हैं, वो चला रही है तो स्वाभाविक कांपेंगे। तो सुभ्रु, सुभ्रु जिसकी भावें बहुत सुंदर थी, सुखदेव गोस्वामी माँ यशोदा के मुख पर और मुख पर भी आंखों पर ध्यान दे रहे हैं, ऐसे मत रहे तो बहुत ही सुंदर भावें हैं। तो यह उपलक्षण है, इसके द्वारा माँ यशोदा के अद्वितीय अप्रतिम सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। भगवान की माँ भगवान के समान सुंदर है। शुभ्रु रज्ज्वा कर्ष श्रम भुज चलत कंकड़ कुंडलेच। रज्जु आकर्ष बड़ा मटका है और मटके में मंथन दंड डूबा हुआ है जिसके नीचे चौड़ा होता है, तो उसको खींचने में श्रम हो रहा है। माँ ने कभी इस तरह का परिश्रम किया नहीं था, वो तो रानी है, दासियां करती थी, लेकिन आज जो कृष्ण प्रेम में पड़कर पुत्र के स्नेह के वशीभूत होकर स्वयं मथ रही है, तो रज्जु आकर्ष श्रम रस्सी खींचने में श्रम हो रहा है और भुजाओं से खींच रही है, तो भुजा में जो चूड़ियां हैं कंकड़ वे बज रहे हैं झन 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 खन खन ऐसे। तो चूड़ियां क्यों बज रही हैं? हरीश्री जी कहते हैं माँ के हाथों के जो चूड़ियां हैं वे अप्राकृत जगत की चूड़ियां हैं, सभी जीव हैं, तो मानो आपस में वे चूड़ियां कीर्तन गा रही हैं कि धन्य हैं हम, हमारा जीवन सार्थक है, हम उन हाथों में हैं जो हाथ कृष्ण की सेवा में लगे, तो वो बेचारे खुशी से गा रहे ये चूड़ियां गा रही है, नाच रही है कि आज हम उन हाथों में हैं जिन हाथ जो हाथ कृष्ण के सेवा में लगे। कुंडले च और दोनों कान के कुंडल झूम रहे हैं, झूमना तो स्वाभाविक है, वो खींच रहे ऐसे ऐसे तो वो झूल रहे हैं। तो भक्त कहते हैं कि कान के कुंडल इसलिए झूम रहे हैं कि वे सोच रहे हैं कि ओहो धन्य है हम उन कानों में हैं जो कान कृष्ण की कीर्ति सुन रहे हैं, माँ गा भी रही है सुन भी रही है, तो वो भी कान में नाच रहे हैं खुशी से, उनको बहुत प्रसन्नता हो रही है माँ के कान में रहने के कारण, कर्ण भूषण हिल रहे। स्विन्नम वक्त्रम मुख पर पसीने की बूंदे आ गई है, लेकिन माँ इतनी तन्मय है दही मथने में कि वो अपने पसीनों को पोछ नहीं रही है, उसको ध्यान भी नहीं है कि शरीर पर पसीना आ गया है। अति सुंदर मुख कमल पर पसीने की बूंदे मोती की तरह चमक रहे थे, और उस भोर का समय था, सवेरे का समय था, दीपक जल रहा था, मंगला आरती का समय था, और भोर में माँ को इतना परिश्रम हो रहा है अपने पुत्र के स्नेह के कारण, तो वो झलक रही है परिश्रम की बूंदे श्रम बिंदु माँ के चेहरे पर। सुखदेव गोस्वामी मानो उसी घर में बगल में खड़ा होकर के अब देख रहे हैं। हरे कृष्ण। स्विन्नम वक्त्रम मुख पर वक्त्र पर पसीने की बूंदे आ गई हैं। कबर विगलत मालती और माँ के केशबंध से जूड़ों में जो मालती की मालाएं लगाई गई थी तो वो खींचने से फूल नीचे गिर रहे थे, नीचे फूलों का बंधन खुल गया था तो फूल नीचे गिर रहे थे, तो इस तरह माँ को अपने देह का ध्यान नहीं था। एक टीकाकार कहते हैं कि फूल सोच रहे हैं कि ऐसी महिमामयी कृष्ण प्रेममयी माँ के मस्तक पर रहने लायक हम नहीं हैं, तो वे माँ के मस्तक से गिर गिर कर उसके चरण में आ रहे थे फूल। इस प्रकार से जिसका जीवन कृष्णमय है, कृष्ण सेवा से भरा है, उसके मस्तक पर रहने लायक हम नहीं, इसलिए वे फूल गिर रहे थे चरण में। यह सब वास्तव में सत्य भाव है। तो माँ का मन तन और वचन तीनों लगे हुए, वो गाने में व्यस्त है। हरीश्वरी जी कहते हैं कि जो व्यक्ति तन मन और वचन लगा देगा भगवान में, और विशेष करके भगवान की लीलाओं का कोई गान करे, तो क्यों नहीं भगवान सारा कृत्य छोड़कर उसके पास आ जाएंगे। कृष्ण उस समय सो रहे थे, वह उनके जगने का समय नहीं था, देर से जगते थे, लेकिन जब माँ का परिश्रम उन्होंने देखा तब वे जग गए। हरीश्वरी जी कहते हैं कि अपने घर के काम धंधा में व्यस्त रहने पर भी, काम करते समय में भी जो भगवान की लीलाओं का गान करता है तो उसे भगवान की प्राप्ति हो ही जाएगी, इसमें संदेह नहीं। तो माँ गा रही है लीला, तन सेवा में लगा है, तो तामस्तन्य काम आसाद्य मथनंतिम जननी हरि गृहीत्वा दधि मंथानम न्यसेधत प्रीतिमावहं। तो भगवान स्तन्य काम हो गए। स्तन्य काम का अर्थ है स्तन के दूध के इच्छुक, स्तन्य का अर्थ है स्तन का दूध, और काम का अर्थ है इच्छा अभिलाषी, जिसको माँ के स्तन की लालसा हो गई पीने की। हरीशुरी जी इस श्लोक के भाव पर कहते हैं कि जो व्यक्ति तन मन और वचन भगवान में लगा देता है, विशेष करके उनकी लीलाओं का गान करता है, नाम का कीर्तन करता है, तो भगवान उसके हृदय का रस पीने के लिए, भक्ति रस पीने के लिए वो कामुक हो जाते हैं, उनके हृदय में वासना जग जाती है। निद्रा एक बहुत बड़ा सुख है, लेकिन भगवान उस सुख को भी तिलांजलि दे दिए भक्त के हृदय का रस पीने के लिए। तो स्तन्य काम हो गए। भगवान के संपूर्ण जीवन में यह पहला अवसर आया होगा कि उनके अंदर इस प्रकार की कामना उठी, स्तन्य काम, माँ जसोदा के स्तन के दूध के इच्छुक। अच्छा, दूध की इच्छा हुई तो जब निद्रा उनकी खुली तो उनको अनुभव हुआ कि भूख लगी है। किस चीज की भूख है? स्तन्य भूख, स्तन से निकलने वाले दूध की कामना। तो ऐसे जगे तो प्रतिदिन जगते थे, तो माँ बेड पर ही रहती थी और जगाती थी, और जगते थे तो लेती थी गोद में, वो देखे कि माँ नहीं है तो आंख मलने लगे, ये करने लगे, और माँ तो नहीं सुन रही थी, ऐसे रो नहीं रहे थे। बच्चे कभी कभी इस तरह नाटक किया करते हैं, तो जानबूझ करके करते हैं कि माँ हम पर ध्यान देगी। तो ये करते हुए गए उस घर में जहां माँ माखन निकाल रही थी, दही मथ रही थी। तो गए, आंख मलते हुए जगे थे, गए तो देखा कि माँ ध्यान नहीं दे रही है। उसका तो मन लगा था लीला के चिंतन में, और वाणी लगी थी कीर्तन में, और शरीर सेवा में, कर्म में लगा। तो वे गए, ऐसे माँ मथ रही थी उस मटका में। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि किस उपाय से माँ को रोकूं। तो छोटे छोटे हाथ थे, वे गए और मटका में जो मंथन दंड था, जो घूम रहा था रड, उसी को पकड़े, ऐसे जाम कर दी, ब्रेक लगा दी। तो जब वो नहीं चला तो माँ का ध्यान गया, वो देखती है वो कृष्ण आ गया है, तो वो चुपचाप खड़ी रह गई और देखने लगी क्या कर रहा है। माँ ने जबरदस्ती नहीं किया, नहीं तो वो चाहती तो ये छोटा बच्चा क्या रोक सकता था इसके ब्रेक डालने से वो रुकने वाला नहीं था। लेकिन माँ को बहुत प्रसन्नता हुई, प्रीति माँ बहन, जब बच्चा आ करके मंथन दंड को दोनों हाथ से पकड़ कर रोक दिया, तो प्रीति माँ बहन, माँ के हृदय में बहुत सुख हुआ। माँ इस भाव से बहुत प्रसन्न हो गई कि मेरा पुत्र मुझे कितना चाहता है, नहीं रोक रहा है मेरा दूध पीने के लिए, पीऊंगा पीऊंगा इस तरह से कुछ कह भी रहे थे तो रोक दिया। तो माँ ने भी काम रोक दिया। कैसी माँ को रोके? मथनंतिम जननी, मथती हुई जननी को रोके। कैसे? गृहीत्वा दधि मंथानम, दधि मंथान, दधि मंथन दंड को पकड़कर रोक दी। जब रोक दे तो माँ ने भी मथना छोड़ दिया और दिखने लगी कि क्या कर रहा है। वो दोनों हाथ से माँ का कमर पकड़ा ऐसे, और जो घड़ा था उसके ऊपर अपना पैर एक रख, पैर रख करके, और अपना जहाँ स्थान है माँ का स्तन पहुंच गए, और माँ के आंचल को कंचुकी को हटा करके और पीने लगे। माँ कुछ नहीं कर रही थी, वो देख रही थी कि क्या कर रहा है। जब पीने लगा तो माँ ने भी कर्म छोड़ दिया और पिलाने लगी, अभी छोड़ दी। उसको बहुत सुख मिला। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रीति माँ बहन, अपने माँ का सुख बढ़ाते हुए भगवान ने दधि मंथानम न्यसेधत, दधि मंथानम गृहीत्वा न्यसेधत, मानो भगवान ने यह संकेत किया कि अब क्या परिश्रम कर रही हो जब मैं सुलभ हूं। हरीश्वरी जी कहते हैं कि भगवान यह संकेत कर रहे हैं कि जिसको मैं पुत्र के रूप में प्राप्त हो चुका हूं अब उसको क्या मंथन करना है। खास करके शास्त्रों का जो अध्ययन है उसको भी लोग मंथन कहा करते हैं, तो मंथन करो, इसको समझो। तो जिसके घर में भगवान पुत्र बनकर आया है अब वो क्या उपनिषद सुधा का मंथन करेगा। भगवान इस लीला के द्वारा ये सिखा रहे हैं कि मंथन वो लोग किया करें जिनको मैं प्राप्त नहीं हूं, मैं जिसको प्राप्त हो गया हूं अब क्या मंथन करना है, क्या बहुत बहुत मीमांसा करनी। और जब मैं प्रसन्न हो जाता हूं तो कर्म छोड़ देने के बाद भी कोई भय नहीं, तो मां ने भी छोड़ दिया कर्म। यदि उन्हीं के लिए वो माखन निकाल रहे थे लेकिन बच्चा जब इतना स्नेह से प्रेम से पीने लगा और वो भी किस भाव से, जननी, इसका अर्थ है कृष्ण अब इस बात को समझने लगे थे, ऐसी उनकी मान्यता उनकी बुद्धि हो गई थी कि यह मेरी माँ है, इसके गर्भ से मैं जन्म लिया। अब वो इतना छोटा बच्चा नहीं थे कि नहीं समझ रहे थे, तो जननी शब्द देने का यह अर्थ, वो जानते थे कि हमको इसने जन्म दिया है, तो वे दूध पीने लगे। देखिये भगवान सोए थे लेकिन भक्त की सेवा ने, जसोदा की सेवा ने उनकी नींद तोड़ दिया, वे स्तन्य काम हुए और स्वयं सचल हुए, चले वहां से और मां के गोद में आकर के दूध पीने लगे। तो मां भी दूध पिलाने लगी। तमंक मारूढ़म अपायतस्तनम स्नेह स्नुतम सस्मितमिच्छति मुखम तम अंकम आरूढ़म। अंक में आरूढ़ है अपने पुत्र को, स्नेह स्नुतम स्तनम अपायत, स्नेह से तो दूध अपने आप झर ही रहा था, ऐसे स्नेह से चूते हुए स्तन को वो पिलाने लगे। तो श्री कृष्ण की आसक्ति बताई जा रही है इसमें, माँ यशोदा का दूध पीने में उनकी आसक्ति थी और माँ को अपार आनंद मिल रहा था कृष्ण को दूध पिलाने में। तो न तो माँ यशोदा का दूध घट रहा था और न तो कृष्ण की तृष्णा बुझ रही थी, वो भी प्रेम के भूखे भगवान दूध पीने लगे तो घंटों पीने लगे। और माँ का दूध भी अप्राकृत जगत का दूध है, कितना भी भगवान पियो घटने वाला नहीं था। तो दूध घट नहीं रहा है, कृष्ण पीना छोड़ नहीं रहे हैं, तो अंगीठी पर चूल्हे पर जो पद्मगंधा गाय का दूध औंटा जा रहा था, वो बेचारा इतना तप कर रहा था कि कृष्ण हमको पिएंगे। और जब उसने देखा कि कृष्ण माँ का दूध पी रहे हैं बहुत स्नेह से, तो उसने सोचा कि मैं तो बेकार जल जल कर तपस्या कर रहा हूं, हमको तो पिएंगे नहीं, जब इनका पेट भर जाएगा तो हमको नहीं पी पाएंगे, दूध ने ऐसा सोचा। तो उसने सोचा कि माँ के सामने ही आत्महत्या कर दूं, तो उफान आ गया दूध में। इस प्राकृत जगत के जड़ दूध की तरह अप्राकृत जगत के दूध को नहीं समझना चाहिए, वहां प्रत्येक वस्तु चिन्मय होती है। तो दूध इस प्रकार का विचार किया यह असंभव नहीं है। कुछ लोग सोच सकते हैं अरे ये तो भावुकता है भक्तों की, ऐसा कहां दूध सोचेगा ये करेगा, तो वो जानते नहीं परस तस्मात भाव भावक तो अव्यक्तो व्यक्तत सनातन। उस जगत की जो भी वस्तुएं हैं सब इस जगत से बिल्कुल भिन्न है। दूध ने यह भी सोचा कि जिनका नाम लेने पर तीनों ताप से जीव मुक्त हो जाता है वही हमारे सामने है और फिर भी मेरा ताप नहीं जा रहा है, फिर भी मैं तप्त हो रहा हूं, धिक्कार है मुझको, ये जीवन बेकार है। और खास करके उसने देखा कि माँ जो सोदा दूध पिलाती जा रही है कृष्ण पीते जा रहे हैं, तो उसने सोचा कि मैं जो जल जल कर तपस्या कर रहा हूं तो मेरा तो सदुपयोग कुछ होगा नहीं, तो माँ के हृदय में दया उत्पन्न हो जाए, वो अपना दूध न पिला करके हमको बचावे, इसके लिए वो माँ के सामने आत्महत्या करने चल दिया। माँ की दृष्टि पड़ गई, अतृप्त मुश्रिज जवेन साज जो उत्सिच माने पैसी तो धीसते। माँ ने जब ही देखा कि दूध में उफान आ रही है, उफान वो अति हॉट अति तप्त हो गया है, तो कृष्ण पर कोई उसने विचार नहीं किया, कृष्ण को तत्काल हटा करके जमीन पर रह करके दौड़ी दूध बचाने के लिए। माँ का यह विचार था कि अपने छाती का दूध तो अपना है, ये तो अपने पास है, जब चाहूंगी पिला लूंगी, लेकिन ये पद्मगंधा गाय का दूध जो औंटा जा रहा है, उबाला जा रहा है, ये तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए माँ कृष्ण के तृप्ति अतृप्ति पर कोई विचार नहीं की, बहुत देर से पिलाई थी लेकिन ये बच्चा तृप्त नहीं हो रहा था। पर माँ ने कोई परामर्श भी नहीं किया, बच्चे को कहा होता है कि ठीक है, पुचकारा होता है, तुम थोड़ा रुक जाओ, बैठ जाओ, मैं वो दूध उतार लेता हूँ, लेकिन उसने विचार नहीं किया। कृष्ण को जस्ट झट से नीचे रखा और दौड़ी पानी डालने के लिए, चाहे कुछ करने के लिए। जब वो जा रही थी तब तक दूध शर्म के मारे नीचे चला गया। उसने सोचा कि वो माँ के सुख में मैं बाधा दिया अपने सुख के लिए, तो उसको उतारना नहीं, उसको पानी नहीं डालना पड़ा। माँ जब ही दूध के पास आने लगी तो दूध इस संकोच से गड़ गया कि ओहो, मैं अपने सुख के लिए माँ के सुख में बाधा दिया। वो लज्जा से नतमस्तक होकर फिर जितना लेवल में था बर्तन में उतना ही पड़ा। माँ ने देखा कि ये तो दूध औंटा जा चुका है, उबल चुका है खूब अच्छी तरह से, तो उतार करके ढक करके उसको रख दी। लेकिन जब माँ यशोदा कृष्ण को गोद से उतार करके गई, उसी समय इनको बहुत क्रोध हुआ। मैं बैकुंठ छोड़कर जिसके घर में आया हूँ वो थोड़े से दूध की हानि नहीं सह सकती है, इसका तो मुझसे कोई प्रेम ही नहीं है, मुझे बिना तृप्त किए बिना दूध पिलाए जा करके थोड़ा सा दूध है बचा रही है। उधर माँ गई ज्यों दूध उतारने के लिए, त्यों ही इधर इनको क्रोध आया। हरिश्वरी जी कहते हैं जिसमें काम आएगा तो क्रोध क्यों नहीं आएगा, क्रोध तो कामानुज है। जब काम आ गया, अगर काम स्तन्य काम हुए तो काम के बाद क्रोध निश्चित है, काम ऐसा क्रोध है ऐसा रजोगुण समुद्र, तब क्रोध है आ गया। यदि छोटा सा बच्चा और माँ पर क्रोध कर रहा है, मतलब बच्चे के मन में आया कि माँ का व्यवहार अनुचित है, सब कुछ छोड़ करके मुझे दूध पिलाना चाहिए और मुझे छोड़ करके थोड़ा दूध बचाने गई तो देखो मैं कितना बर्बाद कर देता हूं, थोड़ा सा दूध बचाने गई है तो मैं कितनी हानि कर देता हूं। और वहीं वो अपने दांतों से अपने सुंदर सुंदर ओठों को दबाए क्रोध में और खोजने लगे कोई पत्थर। तब तक एक शिला पुत्र मिल गया, पत्थर छोटा सा। शिला पुत्र कहते हैं जो मसाला पीसने के लिए सील होता है बड़ा, उसका एक छोटा सा बेटा होता है जिसे पीसते हैं, तो उसको शिला पुत्र कहते हैं, 210 मना। तो वो खोजे और मिल गया, और मिल गया तो बहुत कलात्मक ढंग से उसके पेंदी में मारे, जो मटका बहुत वर्षों का था जिसमें मथा जा रहा वो तो फूट गया और सारा दही बह चला, और अभी भी क्रोध शांत नहीं हुआ था। तो दही फैल गया घर में, अब उस बच्चे को भागने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। पहले बुद्धि नहीं थी कि जिधर भागना है उधर से विपरीत दिशा में फोड़ें, और फोड़ा दही फैल गया तो अब क्या करें, तो छप छप उसी दही पर भागा। तो भागा तो दही का निशान, चरण का निशान बनता गया कि कहां गया। मां जब उधर दूध उतार करके आई तो देखी तो मटका फूट गया है, मटका तो फूटा ही, दही सब बह चुका है। उसको देख करके माँ यशोदा को हंसी आ गई, इतने छोटे छोटे धन हानि से वो घबराने वाली नहीं थी, उसको हंसी आई। जहास सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जहास हंसने लगी और अपने बच्चे को वहां देखी नहीं, तो हंसी क्यों, को समझ गए कि उसी का काम है। ऐसा नहीं है कि कोई बिल्ली कूद पड़ी या कोई सामान गिर पड़ा इसलिए मटका फूट गया है, वो समझ गए कि उसी का काम है। लेकिन उधर थी दूध के तरफ तो पता नहीं चला, क्योंकि इतना ढंग से वो मारा था कि आवाज बिल्कुल नहीं निकली, और मार करके फोड़ करके और शिला पुत्र को एक किनारे कोने में फेंक दिए थे। तो माँ को हंसी आ रही है, या दैव की गति को जानकर वो हंसी। हरिश्री जी कहते हैं देखो मैं थोड़ा सा दूध बचा रहे थे, कितनी हानि हो गई। मनुष्य इस तरह से सोचता है कि यहां बचाऊं तब तक वहां लॉस्ट हो जाए। एक बात से थोड़ी उसके हृदय में खुशी हुई कि मेरा बेटा गुणवान है, ऐसा छेद किया कि सयाने लोग भी नहीं कर सकते, वो भी मिट्टी के घड़े में। केवल एक छेद किया था, शब्द ही बह गया था। इसके बाद उसने देखा कहाँ गया है, तो चरण चिन्ह बता रहे थे कि कहाँ गया है। उससे अज्ञ बालक को यह भी पता नहीं था कि दही पर नहीं जाना चाहिए था, तो छोटे छोटे पैर थे और निशान बनता गया था। जैसे जैसे दूर चलते जा रहे थे वैसे वैसे पतला निशान होता जाता था। तो उधर जाकर कर क्या रहे थे, संजात कोप स्फुरिता ऋणाधरम संदस्य दधि दधिमंथ भाजनम भित्वा मृषाश्र दृषदस मना रहो जघास है अंगो मंत्रम। और दही का मटका फोड़ करके वे गए दूसरे घर में, तो मृषाश्र झूठा आंसू भर लिए थे आंख। झूठा आंसू कि मैं कितना भूख से तड़प रहा हूं और यह अभी दूध बचाने में लगी है, तो मैं दिखा देता हूं कितने कितना मैं बर्बाद करता हूं, दूध बचाने वाली हो गई, हमसे ज्यादा वैल्यू दूध रखता है, हमसे ज्यादा कीमत दूध की हो गई। वो मन में सोच रहे थे, उनके कहने का आशय था कि इस घर में हमारा कोई आदर नहीं, हमसे कोई प्रेम नहीं, मैं इतना दीन हो गया, इतना हीन हो गया, हमारी परवाह न करके और दूध बचा रही। तो अपनी अवमानना अनुभव करके मृषा अश्रु आंख में भरे, बच्चे भी झूठा आंसू भर लेते हैं आंख। लोक में भी देखा जाता है, नाटक करने वाले तो झूठा रोते ही हैं, लेकिन बच्चे भी कभी कभी झूठा। मृषाश्रु सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि झूठा आंसू थे, भीतर बहुत तकलीफ नहीं हो रही थी मन में, लेकिन माँ को दिखाना था कि मैं बहुत दुख में हूं, बहुत भूख में हूं, और इसीलिए जा करके दूसरे घर में माखन खा रहे थे। हयंगवम जघास, खाने लगे, छीके पर रखे हुए माखन को लेकर के से खा रहे, खा वो नाटक कर रहे थे, खा भी नहीं रहे थे, बानरों को बांटने लगे और कैसे उलूखल को उल्टा करके और चढ़ गए थे, उखल को उलाट लिए, पलट लिए, और चूंकि उखल का जो नीचे का अंग होता है वो चिकना प्लेटफार्म होता है, उस पर खड़ा होने में ठीक रहेगा, और ऊपर का अंग जो होता है तो किनारे किनारे उसकी धार जैसी होती है, उस पर खड़ा नहीं हो सकते, तो उल्टा कर लिए और चिकने उखल के चरण में खड़ा होकर के और पकड़ लिए थे ठीके को, और उसमें से खूब फेंक रहे थे क्रोध में, और कभी कभी खाने का नाटक कर रहे थे। और उनके कहने का आशय यह था कि मुझे इतनी भूख लगी है, इतनी भूख लगी है कि आज मुझे बासी माखन खाना पड़ रहा है, तो तुम्हारा ये माखन भी बर्बाद हुआ होगा और मटका बर्बाद तो किया ही, मैं अब बीमार पड़ूंगा, तब तुम मथुरा अस्पताल में मुझको ले चलोगे, तो तुम्हारा कितना धन बर्बाद कर दूंगा, ये दिखा रहे थे। अब मैं बीमार पड़ना चाहता हूं और फिर भी अभी क्रोध दिखा रहे थे, दुख दिखा रहे थे, भाई दुख ही दिखाओ, अभी क्रोध क्यों दिखा रहे, लेकिन क्रोध भी दिखा रहे थे और दुख भी दिखा रहे थे और भय भी था एक ही साथ, भय था। बानरों को बांट रहे थे माखन, कुछ खा रहे थे और आंख में अभी भी आंसू भरा था मिथ्या, लेकिन चोर जो विसंग की तेक्षण, चोर की तरह भयभीत नेत्र से देखते रहते थे कि वो तो आएगी जरूर, वाह न जाए, देखते रहते थे और देखते रहते थे ऐसे देखते थे और फेंकते रहते। तब तक उन्होंने देखा कि हाथ में छड़ी लेकर आ रही ये माँ यशोदा, अब तक हाथ में छड़ी कभी नहीं उठाई थी। तो कृष्ण को तो इतना पता हो गया था कि वे मटका फोड़कर बहुत भारी अपराध कर चुके हैं, बच्चे को इतना मालूम हो रहा था, कृतागसी आगस कर चुके थे, अपराध कर चुके थे। जिस दिन वो मटका फोड़े थे उस दिन माता कुंती जी ब्रज में थी, और जसोदा ने जब रस्सी उठाया था बांधने के लिए कृष्ण को, तो कुंती ने अपने आंखों से देखा था इस दृश्य को। तो वही महाभारत युद्ध के बाद भगवान कृष्ण से कह रही हैं कि आपकी अजीब दशा हो गई थी। तो चौर विषम के तेक्षण बड़ा सुंदर वाक्य है, निरीक्ष पश्चात सुतमा गच्छन। तो मां जसोदा हाथ में छड़ी लेकर और बहुत धीरे धीरे आ रही थी कि मां जसोदा के पैर के नूपुर की आवाज न होने पाए, नहीं तो जेनी सुनेगा तो बहुत दूर भाग जाएगा, उसको पकड़ना था। तो धीरे धीरे पैर को दबा करके छिप करके आ रही थी, लेकिन वो तो चोर राज वो देख लिए तुरंत, वो देख लिए दूर से ही को तो आ रही है। प्रसमीक्ष तामा तयस्टिम प्रसमीक्ष सत्व रह ततो वरुहिया पससार भीतवत। वो भयभीत होकर के जैसे भयभीत आदमी भागता है वैसे श्री कृष्ण भागने लगे। प्रसमीक्ष प्र और सम इक्ष प्रकर्षेण सम्यक इक्ष, खूब अच्छी तरह से देख लिए। यद्यपि माँ छड़ी को बगल में दबा करके आ रही थी, ऐसे हाथ में दिखाते हुए नहीं आ रही थी, लेकिन कृष्ण देख लिए। खूब अच्छी तरह से विचार किए कि छड़ी है, यष्टि है, ओ यष्टि के साथ आ रही, अब तो आज तो मरम्मत कर देगी, अब तो आज नहीं छोड़ेगी। बहुत काल से मेरी शिकायत होती आती थी, लेकिन आज तो अब पिटाई करेगी। इसलिए ततो अवरुह्य सत्वर, उस उखल से कूद करके, धीरे धीरे नहीं उतरे, धम से कूद करके और भाग। और सत्वर अवरुह्य अपससार, चले भाग। पहले तो अपने घर में भागे, और मां जसोदा ने भी निश्चय कर लिया कि इसको किसी तरह आज पकड़ करके पीटना है, डराना है, धमकाना है, नहीं तो इसकी तो बहुत आदत बिगड़ती जा रही है। तभी आज घर का मटका फोड़ा, कल घर फूंक सकता है, कल कुछ कर सकता है। यदि आज इसको दंड नहीं देती हूं तो मेरा बेटा तो किसी काम का नहीं रह जाएगा, उसको बहुत चिंता थी। तो वो भी जब कृष्ण भागे तो वह भी पीछे से चली, लेकिन कृष्ण हल्के शरीर वाले थे, वे खटखट भागते जा रहे थे, और माँ का शरीर खास करके उसके नितंब और स्तन भारी थे, इस कारण से वो बड़े वेग से नहीं चल पाती थी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि योगियों का चित्त भक्ति योग से पवित्र हो जाता है, तपस्या से पवित्र हो जाता है, फिर भी भगवान का चिंतन तक नहीं कर पाता है। तपस्या से तेज किया हुआ मन जिनको नहीं पकड़ पाता है, उनको पकड़ने के लिए डायरेक्ट सामने से पकड़ने के लिए, जबकि योगियों का मन नहीं पकड़ सकता कृष्ण को। तो गोप्यन धावन न जमाप योगिनाम क्षमम प्रवेष्टुम तपसे रितम मन। तपस्या के द्वारा मन बहुत शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध मन तो भगवान का चिंतन कर सकता है, लेकिन फिर भी वह योगियों का मन भगवान को पकड़ना चाहता है, अपने चिंतन में बांधना चाहता है। ऐसे फाइन किया हुआ मन जिन भगवान का चिंतन करने में भी असमर्थ रहता है, नहीं पा पाता है, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे, कृष्ण के पीछे पीछे माँ जसोदा दौड़ने लगी। पहले तो अपने घर में भागे, फिर घर से निकलकर गली में भागे, गली में से भी इस घर में, उस घर में, और माँ जसोदा पीछे पड़ गई कि पकड़ करके रहूंगी। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अनवंचमाना जननी बृहत चल जलनी बृहत चल श्रोणी भराक्रांत गति सुमध्यमा। अनवंचमाना, अंचमाना, अंचल, कृष्ण के पीछे पीछे माँ जसोदा दौड़ रही थी। यदि कृष्ण चाहते तो बहुत आगे भाग सकते थे, लेकिन केवल वे उतनी ही दूर रहते थे कि माँ को आशा बनी रहती थी कि अब पकड़ी, अब पकड़ी, अब पकड़ी। और कृष्ण जो भागते थे तो ऐसे हाँफ रहे थे भागते हुए, छोटा सा शरीर, अब पकड़ी, और भयभीत होकर के कभी कभी देखते थे, भागते थे, हाय पकड़ लेगी, मारेगी, और माँ हाथ में छड़ी लेकर कहीं दौड़ रही थी। आज नहीं छोड़ूंगी, आज पकड़ूंगी। और दूर से कहते आज बता देती हूँ, आज बता देती हूँ, रुको नहीं तो और दंड दूंगी, और दंड दूंगी। लेकिन कृष्ण तो भागते जा रहे थे, तो मां भी भागते जा रहे थे। श्रोणी बृहत चल श्रोणी भराक्रांत गति सुमध्य में, माँ के नितंब बड़े बड़े थे इसलिए वो कम दौड़ पाते थे। तो श्री कृष्ण उतना ही भागते थे जितना माँ को आशा बनी रही, यद्यपि उस बच्चे के लिए उतना भागना ही काफी था। माँ यशोदा के पैर लंबे लंबे थे, वो तो बहुत एक बार में कितना फिट जा सकती थी, और बच्चा तो कार के पहिए जैसा जल्दी 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 भाग रहा था तो वो हाँफ रहा था, और माँ को भी परिश्रम होने लगा। अब प्रसून जो खोसी थी सिर में, वो सब फूल गिर रहे थे, केश बंधन बिगड़ रहा था, तो फूल गिरते जा रहे थे। माता उनको पकड़ने के लिए जा रहे थे, जा रहे थे, बहुत हैरान किए, इधर भागना इधर भागना। कभी कभी कृष्ण ऐसे करते थे कि माँ पकड़ने के लिए दौड़ती है तो थोड़ा रुकते थे, और छूते छूते तब तक फिर भाग जाते थे, और रो रहे थे, मतलब भयभीत थे। अभी उतना आवाज करके नहीं रो रहे थे, भयभीत थे। और जब ही माँ ने पीछे से पकड़ लिया दौड़ करके, और पकड़ में भगवान आ गए, भगवान ने सोचा कि अब माँ को इतना परिश्रम देना ठीक नहीं है। पहले उन्होंने सोचा कि थोड़ा भागूंगा तो बीच में रुक जाएगी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बिना पकड़े नहीं रहेगी, मेरे पीछे पड़ी ही हुई है, तो वे पकड़ में आ गए। कृता गसम तम प्ररुदंत मक्षिणी कसम तम अंजन मशिणी स्वपाणिना। श्री कृष्ण एक हल्का सा आभूषण गले में लगाए थे और एक कपड़ा पहने, तो पीछे से माँ ने पकड़ लिया कमीज पीछे से दौड़ करके पकड़ लिया। पकड़ते ही बस अब जोर से रोने लगे, खूब फफक फफक कर रोने लगे उच्च स्वर से, और भयभीत थे ही, आंख से आंसू ढर ढर आने लगे। इतने आंसू आने लगे तो उन्होंने तो पहले तो सोचा कि इतने जोर से रोऊंगा और ये पकड़ेगी, मेरा आंसू गिरेगा तो ये पोछेगी आंसू, लेकिन माँ तो आज इतना कठोर हो गई थी कि आज आंसू पोछना तुमको आज पीटा जाएगा, तुम्हारा आंसू पोछा जाएगा। अब तो रोज रोज आंसू पोछती थी, चाहे मुख पोछती थी, दूध पिलाती थी, तो ये सोचते थे कि आंसू पोछेगी, तो आंसू को पोछी नहीं, बल्कि आंसू पोछने वाला एक हाथ भी पकड़ ली, एक हाथ पकड़ ली और लगी डांटने, अरे बानर बंधो मंथनी स्फोटक, अरे गृह लुंठक घर को लूटने वाला, अभी मैं तुमको बांध करके रखूंगी और खेलने के लिए अब कभी भी मैं तुमको अनुमति नहीं दूंगी, सब बच्चे खेलेंगे लेकिन तुम बंधे बंधे घर में रहोगे, और आज से तुमको कभी माखन नहीं दूंगी। तो श्री कृष्ण तो पहले से ही रो रहे थे, अब ये सुने तो और रोने लगे, और रोने लगे। सुने अब आज से घर में बंधन में रहना है, खेलने की अनुमति नहीं और माखन नहीं खाने को दिया जाएगा, कहीं भी कोई सुविधा नहीं। कृष्ण की आंख पर आंसू बह रहे थे, आंसू बह रहे थे, तो अपने एक हाथ से अब आंसू को पोछना चाहते थे, लेकिन आंसुओं के कारण काजल और डाइल्यूट और पतला हो जाता था, और आंसू में पतला होकर के बह रहा था और आंखों से मल रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, प्ररुदंत मक्षिणी कसंत मंजन मशिणी स्वपाणिना, एक हाथ से आंसू पोछ रहे थे तो उनके आंखों की मसी, उनके आंखों का अंजन फैल रहा था, गाल पर फैल रहा था इधर, तो गाल पर आंख में फैल रहा था और आंसू निकलते ही जा रहे थे, इसलिए काला काला आंसू गाल पर गिर रहा था, इधर उधर गिर रहा था, और फफक फफक कर रो रहे थे, रो रहे थे, रो रहे थे इसलिए कि अभी भी छोड़ देगी। इस तरह से भगवान अपराधी पकड़ लिए गए, मां से वे भाग नहीं सके ज्यादा, यद्यपि बहुत देर तक भागते रहे लेकिन अंततः मां ने पकड़ लिया। भगवान वास्तव में इस सुख का आस्वादन करना चाहते थे, कि सारे अपराधियों को तो उनका सेवक दंड देता है, जमराज जी जमलोक में दंड देते हैं, इन भगवान को दंड देने वाला आज तक कोई नहीं था। हरिश्वर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस रस को नहीं पाया होता है उसको पाने की उसकी लालसा रहती है। तो भगवान तो ईश्वर है, लेकिन बंधन का रस और डांटने का रस और भर्त्सना करने का रस उनको नहीं मिला था, तो अब आज वे पा रहे हैं रस। माँ यशोदा उनके साथ सुलह नहीं कर रही है, तो जब देखा माने कि बहुत डर गया है। वैसे पहले तो अवागुरत बहुत डांटने लगी, बहुत प्रकार के बात कर रही थी, आज से खाने को नहीं दूंगी, खेलने नहीं दूंगी, माखन नहीं दूंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, कई तरह से बात करने लगी। तो वे और डर गए और रोने लगे। तो माँ ने देखा कि बहुत डर गया है, बहुत भयभीत हो गया है, तो छड़ी फेंक दिया। मैंने सोचा कि ज्यादा ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है, छड़ी हाथ में लेने, छड़ी देख करके ज्यादा डर रहे थे, कभी तो पकड़ी और ऊपर से सड़ सड़ देने लगेगी तो ये ठीक नहीं और मारने लगेगी, लेकिन माँ ऐसी नहीं थी कि उनको मारने लगे। तो छड़ी यष्टिम त्यक्त्वा, त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञा अर्भक वत्सला, अंततः वो अर्भक वत्सला थी। जो भी कर रही थी अपने बच्चे के सुधार के लिए कर रही थी, वास्तव में पीटना उसका लक्ष्य नहीं था, केवल तड़क भड़क कर रही थी, ही तो अर्भक वत्सला, पुत्र वत्सला थी। तो देखा कि पुत्र बहुत भयभीत हो गया है, तो छड़ी फेंक दिया। जब छड़ी फेंक दिया तब कृष्ण की जान में जान आई, तब कुछ अब उनको विश्वास हो गया कि मारेगी नहीं। तब माँ यशोदा ने क्या सोचा, तब तो ये बहुत मैंने इसको परेशान किया, ये भागा इधर उधर और बहुत डांटा डपटा, अगर इस समय इसको मैं छोड़ देती हूँ तो खाएगा भी नहीं, रूठ जाएगा, मेरा दूध भी नहीं पिएगा और कहीं वन में भाग जाएगा, इसलिए इसको थोड़े काल के लिए बांध कर रखना चाहिए। इन मन में यशोदा जी ने सोचा, बाहर से ऐसा ही भाव व्यक्त किया कि इस अपराधी को बांध कर रखना है, लेकिन मन में यह भाव आया कि भाग जाएगा, रूठ करके फिर समय से खा नहीं पाएगा, पी नहीं पाएगा, बीमार हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़े काल तक बांध करके रख। तो ये सब कृतम बद्धुम दामना अतद वीरज को विदा, माँ यशोदा कृष्ण के वीरज को प्रभाव को नहीं जानती थी, इसलिए उसे बांधने का ये सब प्रयास करने लगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं किसको बांधना चाहते थे, न चांतर न बहिर्जस्य न पूर्वम न पिचा परम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगत चय, भगवान में भीतर नहीं है, अंतह नहीं है और बाहिर भी नहीं है, बंधन कहां लगेगा। लेकिन फिर भी माँ ने बांध दिया, यह वर्णन है न चांत, जैसे कोई घर है तो उसके भीतर का कुछ माप है, या हम लोगों का भी भीतर है कुछ, हमारे बाहों के भीतर आकाश आ जा रहा है, या मुंह के भीतर कान के भीतर कुछ चीज है जिसको मद अंतह कहते हैं, लेकिन भगवान के कुछ भीतर नहीं है और भगवान का कोई बाह्य नहीं है कि जिसके ऊपर रस्सी लपेटा जाए बाहर से, न पूर्वम ना पिचा परम, न तो उनकी कोई शुरुआत है न उनका अंत है, पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगत चय, बल्कि जगत में जो शुरुआत और अंत देखा जाता है तो वही कृष्ण, कृष्ण जगत के शुरुआत और अंत है, मतलब वही जगत की सृष्टि करते हैं और वही प्रलय करते हैं, ही इस विश्व के रूप में अपनी शक्ति को प्रकट किए हैं, परंतु ऐसे प्रभु को तम मत्वात्मजम व्यक्तम मर्त्य लिंग मधोक्षजम गोपी को लुखले दामना बबंध प्राकृतम, ऐसे प्रभु को भी इंद्रियों से परे अधोक्षज को माँ यशोदा ने अपना आत्मज बांधकर मानकर उखल में बांध दिया। जिसका कोई शुरुआत नहीं है, भीतर बाहर नहीं है, बंधन लग ही नहीं सकता, उसको भी माँ यशोदा ने बांध दिया। और भगवान के इस बंधन की लीला बड़ी प्रिय है भक्तों को। एक महीना कार्तिक में गाते रहते हैं। भगवान कई लोगों को मुक्त किए हैं या स्वयं नित्य मुक्त हैं, इसको कम गाते हैं भक्त लोग, और बंध गए तो बहुत अधिक गाते हैं। तो बंध जाना कौन बड़ाई हो गई, कि भगवान प्रेम के रस्सी में बंध गए इसलिए उनकी बड़ाई होती। तो किस तरह से वे बंधे, जब माँ कृष्ण को बांधने चली तो सबसे पहले उसने अपने केश पास के रस्सी को खोला, वो लंबी रस्सी थी और लाला की कमर बहुत पतली थी, छोटा सा बच्चा था, तो उसने सोचा कि इसके कमर में रस्सी बांध करके और कहीं खूंटे में बांध दूंगी। तब तक उसका ध्यान गया उखल पर, तो उसने कहा ये भी चोर था, ये भी सहायता कर रहा था, तो उखल से ही बांध दिया। उसके मन में आया कि ये भी अपराधी है। अगर उखल बहुत भारी पत्थर का होता है तो उसने सोचा कि बच्चे को बांध दूंगी तो ये यहीं पर खड़ा रहेगा कुछ देर तक उखल के साथ। उसको ये पता नहीं था कि उखल को ही पटक कर घसीट कर ले जाएगा। तो जब रस्सी लगाई बांधने के लिए, उखल में बांध दिया, पहले उखल में बांधा एक छोर, और कृष्ण के कटी में कमर में जब वो रस्सी ऐसे लपेट करके बांधना चाहती थी तो आते आते दो अंगुल रस्सी कम पड़ गई, जबकि देखने में रस्सी बहुत लंबी थी। तब उसने और रस्सी जाकर के मांगा दूसरे से, इसको छोड़ नहीं रही थी कृष्ण को, वो सोचे कि इसको छोड़ूंगी तो भाग जाएगा, तो अपने दासी से कही को वो रस्सी लाओ। उसको भी गांठ जोड़ी और जब ही कमर में बांधना चाहती थी तो भी दो अंगुल कम हो गए। यह आश्चर्य हो गया, लेकिन फिर भी वो बांधने पर पड़ी रहती, फिर वो रस्सी लाओ। बांधते बांधते कई घंटे बीत गए और दो अंगुल रस्सी कम पड़ रही थी। तो ब्रज की गोपियां सब जुट गई, तमाशा लग गया, क्या हो रहा है, रानी जी इतना क्यों परेशान है। तो देखी कि बांधने पर पड़ी हुई, तो गोपियों ने कह दिया कि अरे रानी जी छोड़ दीजिए, आपके लाला के भाग में बंधन नहीं लिखा है। आश्चर्यचकित हुए कि क्या हो रहा है, सौ सौ फीट रस्सी आती है और गांठ जोड़ करके बंधन में डाला जाता है तो दो अंगुल कम। तो बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन माँ यशोदा को आश्चर्य नहीं हो रहा था, वो पसीने से लथपथ हो रही थी, लेकिन फिर भी कहती थी मैं बांध करके रहूंगी। निर्बंध में आ गई, हठ में आ गई। तो और भी, अब जब घर की रस्सी घटने लगी तो उसने कहा कि गौओं को बांधने वाली जो रस्सी है उसको लाओ। और भी जितनी रस्सियां थी गऊ को बांधने के लिए थी। तो हरीश्वर जी कहते हैं कि भगवान की जो शक्तियां हैं, विभुता, सर्वव्यापकता, अपरिच्छिन्नता शक्तियां, वे सब शक्तियां कहती हैं कि ब्रह्म कहीं गोरस गोरज्जु से बांध सकता है, इंद्रियों का रस्सी इनको थोड़े बांध सकता है। इंद्रियों के बंधन में नहीं आ सकते। तो घट रही थी रस्सी हमेशा, परेशान हो गई माता, पसीने से लथपथ हो गई, कृष्ण की शक्तियां बंधने नहीं दे रही थी। लेकिन अंत में कृष्ण बंध गए, उन्होंने देखा कि माँ जब मुझे बांधना ही चाहती है तो मुझे बंध जाना चाहिए, और भगवान बंध गए प्रीति के बंधन। तो इस लीला के द्वारा भगवान ने क्या दिखाया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं संदर्शिता यंग हरिणा भृत्य वश्यता। हरि ने इस लीला द्वारा यह दिखाया कि वे भृत्यों के वश में हैं, वे अपने सेवकों के वश में हैं। भले सारा जगत, सारे देवता उनके वश में हों, लेकिन भगवान अपने भक्तों के वश में हैं। इस लीला के द्वारा उन्होंने यह दिखाया। पहले माँ यशोदा दौड़कर पकड़ भी ली, इसके बाद बांधना चाहा तो बांध भी दी। तो भगवान अपने इस गुण को इस लीला में दिखाया कि मैं अपने भक्तों के वश में हूं, वे चाहे जैसे मुझे नचावें, जैसे रखें, बेचे तो बिक जाऊं। अगर भक्त बेच देते हैं तो बिक भी जाते हैं, बेचे गए हैं वे। ऐसी कथाएं हैं। कई कई प्रकार की कथा है। सांवलिया सेठ बन गए, किन ये गुजरात के कौन भक्त थे, नरसी मेहता, उनके लिए सांवलिया सेठ बन गए, नामदेव जी का घर छाए, कई कई लीला किए। सखुबाई बन गए थे पंढरपुर में, स्त्री बन गए थे और बंधन में थे। कई प्रकार के भगवान लीला करते हैं। तो इस तरह से उनके प्रति भक्ति करनी चाहिए। भगवान भक्ति से सुलभ हैं और भक्तों के अधीन हैं। सारा जो कर्म करते हैं, लीला करते हैं, भक्तों के आनंद के लिए करते हैं। इस लीला के द्वारा भगवान ने ये बात दिखाई। ऐसे इसका शेष अंश मैं कल कहूंगा। न पूर्वम न पिचापरम, पूर्वा परम बहिश्चांतर, जगतो यो जगच्च यः, तम मत्वात्मजम अव्यक्तं, मर्त्यलिंगम अधोक्षजाम, गोपिको लुखले दामना, बबंध प्राकृतम यथा। न नहीं, च निश्चित, अंतः अंतः, न नहीं, बहिः बहिः बाहर, यस्य जिसके, पूर्वम पूर्व जिसके होने से पहले का समय, नापि और न तो, च निश्चित, अपराम बाद का समय, पूर्वा पराम पहले और बाद में, बहिः बाहर, च और, अंतः भीतर, जगतः जगत का, यह जो, जगत विश्व, च और, यह जो, तम उसको, मत्वा मानते हुए, आत्मजम अपने देह से उत्पन्न पुत्र, अव्यक्तम जिनका किसी भी प्राकृत वस्तु के साथ वर्णन नहीं किया जा सकता, मर्त्यलिंगम मनुष्य नाट्य करने वाले, अधोक्षजाम इंद्रियों के ज्ञान से अतीत, गोपिका यशोदा, उलूखले उखल में, दामना दाम से, रज्जु से, बबंध बांध दिया, प्राकृतम जैसे सामान्य बालक को, जथा जिस प्रकार। तो मां यशोदा ने कृष्ण को उखल में बांध दिया। इस पर सुखदेव गोस्वामी विशेष रूप से प्रवचन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के विषय में कहते हैं कि उनमें न बाहर है न भीतर है और न उनसे पहले कुछ है न बाद में कुछ है। काल की दृष्टि से बोल रहे, बल्कि जगत का आदि अंत और मध्य वे हैं, जगत स्वरूप हैं, अतिंद्रिय हैं, अव्यक्त हैं। ऐसे श्री कृष्ण को, भगवान को मां यशोदा ने रस्सी से बांध दिया, दामना बबंध दाम से। तो जरा आप ध्यान कीजिए, क्या भगवान में बाहर नहीं है? वे आंगन में खेल रहे हैं, जहां पकड़े गए हैं उसके चारों तरफ तो बाहर ही बाहर है, है ना? बाहर मां यशोदा है, उखल है, नंद भवन है, आकाश है, वृक्ष है, पक्षी है, चारों तरफ बाहर ही तो सारा संसार है उनके। तो सुखदेव गोस्वामी क्या पागल हो गए हैं क्या, कहते हैं भगवान के बाहर कुछ नहीं है। तो श्री कृष्ण के बाहर कुछ नहीं है और उनके भीतर भी कुछ नहीं है और उनसे पहले कुछ नहीं था, उनके उनसे पूर्व कुछ नहीं है। पूर्व का मतलब अभी तो 3 वर्ष के हैं, तो 3 वर्ष से पहले क्या काल नहीं था क्या। और श्री कृष्ण जब लीला संवरण कर लेंगे तो उसके बाद काल नहीं चलेगा, अपरम, बाद में भी समय रहेगा, सृष्टि होती रहेगी। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान से पहले कुछ नहीं था और बाद में भी कुछ नहीं रहता है, भीतर भी उनके कुछ नहीं है और बाहर कुछ नहीं है। और फिर कह रहे हैं जगत में बाहरी देखा जाता है, बाहर का भाग, भीतर का भाग, तो जगत का बाहरी भाग वही है, भीतरी भाग वही है, जगत स्वरूप है। ऐसे भगवान को गोपिका ने रज्जु से बांध दिया। तो गोपी ने रज्जु से बांधा, वो तो उस भगवान को बांधा जिसके बाहर भी है, भीतर भी बहुत कुछ है। भीतर रोज दूध पीते थे, माखन खाते थे, वो सब भीतर नहीं जाता था तो कहां जाता था। उनके भीतर है और बाहर तो सारा जगत दिख ही रहा है, पर इसका अर्थ क्या है। भगवान के उस दिव्य श्री विग्रह के विषय में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि वो है क्या चीज। देखने में तो लग रहा है कि माँ के अंक में अट गया है, वो गोद में लेकर के घूमती थी, दूध पिलाती थी, सुलाती थी, तो भगवान माँ की भुजाओं में अट जाते हैं, पलंग पर अट जाते हैं। लेकिन वास्तव में देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान का वह अंग परिच्छिन्न है, सीमित है, परंतु ऐसा नहीं है, उसका कोई बाहरी नहीं है। आप जिस बाहरी जगत को देख रहे हैं, यह जगत तो उनके मुख के भीतर था। मां यशोदा ने यह भी देखा कृष्ण के मुख में कि एक यशोदा मतलब मैं अपने पुत्र को डांट रही हूं, और कृष्ण भी भीतर थे, मुख में, कृष्ण के मुख में कृष्ण का हाथ पकड़े हुए एक यशोदा डांट रही, और इसके साथ ही सारा जगत। यही देखकर माता को बहुत भारी आशंका हो गई कि लगता है कि कोई दैत्य आक्रमण किया है हमारे पुत्र पर, क्या हो गया है। परंतु यह सत्य है। तो जब सारा बाहरी जगत श्री कृष्ण के मुख के भीतर दिखाई दे रहा है, तो इसका अर्थ है कि उनमें बाहर है नहीं कुछ। तब यह पूछा जाएगा, तब भीतर है ना, अंत है, अंत भी नहीं है क्या। अंत भी नहीं है, अंत के 2 अर्थ होंगे। पहला अर्थ तो होगा कि खोखला है, भगवान के भीतर कुछ। तो वास्तव में भगवान के शरीर में भगवत तत्व चिन्मय सत्ता के अलावा और कुछ नहीं है। इतना वे ठोस है कि उसमें छेद नहीं किया जा सकता। नैनम छिन्दन्ते शस्त्राणि, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता है। तो भगवान तो चिद घन वस्तु है, अतः उनके भीतर कुछ नहीं है। और मां ने देखा कि सारा जगत उनके भीतर है। भगवान कृष्ण ने गीता में प्रवचन किया है, मतस्थानी सर्वभूतानी, और फिर कहते हैं नच मतस्थानी भूतानी, मेरे भीतर सारा जगत है, सारे जीव मेरे भीतर हैं। फिर कहते हैं मेरे भीतर कुछ भी नहीं है, मैं सच्चिदानंद घन शरीर वाला, ये सब मिट्टी पत्थर हवा पानी प्राकृत भगवान के शरीर के भीतर हो ही नहीं सकता है। तो बहुत ही यहाँ महत्वपूर्ण विषय है विचार करने की कि भगवान का देह क्या है, श्री विग्रह क्या है। मनुष्य की बुद्धि जो है प्राकृत जगत में रहते रहते प्राकृत धारणाओं में इतनी बंध हो जाती है कि अप्राकृत स्थिति की वो कल्पना नहीं कर सकता। नहीं समझ सकते। जैसे मनुष्य बाहर रह रहा है जल से, तो अकस्मात यदि उसको दिखाया जाए कि जल में भी जीव रहते हैं, तो वह अज्ञ व्यक्ति कहेगा जल में कैसे जीवन संभव है, जल में तो जीव मर जाएगा। लेकिन वह जल के स्वभाव को और जलचर जीवों के स्वभाव को नहीं जानता है, इसीलिए वो कहेगा कि जल में तो जीवन संभव नहीं, केवल स्थल पर जीवन संभव है। तो प्रकृति के कंट्रोल में जीते जीते हम लोग ये जानते हैं कि जो भी नियम है सब हमारे जैसा ही है। यदि भगवान के श्री विग्रह पर विचार करते हैं तो हम अपने जैसे ही उनके अंग को मानते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर जो अध्यात्मवाद में अग्रसर होते हैं वे लोग भगवान को निराकार मानना अच्छा समझते हैं, क्योंकि उनकी धारणा है कि जड़ शरीर है भगवान का, तो इस शरीर से निराकार रहना ठीक है, वो भी ठीक मानते हैं। वास्तव में भगवान को जड़ शरीर वाला मानते हैं जो लोग, उनकी अपेक्षा उनको निराकार मानने वाले लोग अच्छा है, क्योंकि कम से कम भगवान को कई दोषों से वो मुक्त रखते हैं। भले उनका संबंध भगवान से कुछ न हो, लेकिन भगवान को तो जीने मरने आदि से बचा लेते हैं, तो इस कारण से वे अच्छे हैं। निराकार इसलिए वो लोग रखते हैं कि भगवान बूढ़ा ना हो, भगवान मरे ना, क्योंकि यह शरीर तो मरने वाला है। तो सुखदेव गोस्वामी का प्रवचन है, वास्तव में भगवान में बाह्य नहीं है, अंत नहीं है, उनसे पहले कुछ नहीं है। यह जगत जो है वो तो भगवान से निकला है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान से पहले भी जगत था, भगवान बाद में बने। आज वैष्णव दास कह रहे थे, कुछ लोग पूछते हैं कि भगवान के जन्म के कितने वर्ष हुए, तो अभी तो एक साल भी नहीं हुआ, अभी तो गर्भ में है, अभी कहां जन्म हुआ है। इसका इमीडिएट उत्तर तो ये, अभी तो जन्म होगा, जन्मोत्सव मनाएंगे तब एक दिन दो दिन के होंगे, और साल भर का होते होते फिर गर्भ में। तो अभी तो अभी अगर इसमें पूछा जाए तो अभी तो एक दिन के भी नहीं है। अथवा कल जो लोग जन्मोत्सव मनाए थे उनके लिए भगवान अभी पूरा 24 घंटे के नहीं हुए, आधी रात को जन्म लिए होंगे, अभी 12 बजेगा तो 12 घंटे के होंगे, लेकिन हैं पूर्वजों के भी पूर्वज, आदि पुरुष, आद्यम पुराण पुरुषम नव जौवनम, उनसे पहले कुछ था ही नहीं। इसलिए भगवान के लिए सुखदेव गोस्वामी सब जगह करें न अपूर्वम न अपरम, और ऐसा नहीं है कि एक दिन भगवान की मृत्यु हो जाएगी और लोग रहेंगे और जगत का काम धंधा चलता रहेगा, नहीं, जगत का अपरम भी वही है, सबको नष्ट कर देते हैं प्रलय काल में और वो ज्यों के त्यों रहते हैं। ऐसा कभी समय नहीं आएगा जब भगवान नहीं रहेंगे, और ऐसा कभी समय नहीं था जब कृष्ण नहीं थे। तो जिनकी कोई शुरुआत नहीं है और जिनका अंत नहीं है, जिनके भीतर कुछ नहीं है, बाहर कुछ नहीं, बाहर कुछ नहीं का मतलब कि जो कुछ हमारे देखने सुनने में कल्पना में आ रहा है सब वही है, तो इतनी बड़ी रस्सी कहां से आ सकती है उनको बांधने की। फिर भी सुखदेव गोस्वामी एक आश्चर्य में घटना कहते हैं कि तम दामना बबंध, उनको मां ने दाम से बांध दिया। कथा कहने वाला व्यक्ति यह कह रहा है कि भगवान बंधन में नहीं आ सकते हैं, बाहर नहीं भीतर नहीं, वे विभु तत्व हैं, और फिर भी गोपिका ने बांध दिया। अच्छा, गोपिका शब्द कह रहे हैं, गोपिका, गोपी ने बांध दिया, वो भी कोई देवी होती स्वर्ग की तो बहुत बड़ी रस्सी लाती, या बासुकी नाग को लाया जाता, बहुत लंबी रस्सी है, वे पर्वत में लपेटना हुआ मंदराचल में तो बासुकी नाग को लाया गया था, तो गोकुल में तो इतनी बड़ी रस्सी नहीं मिल सकती है, छोटी छोटी रस्सी थी, लेकिन फिर भी गोपी ने बांध दिया। और क्या बांध करके, क्या मान करके बांध दिया, आत्मजम मत्वा, अपना पुत्र मानकर बांध दिया। बबंधक का अर्थ है कि श्री कृष्ण बंधना चाहते नहीं थे, फिर भी गोपी ने ब्लात बांध दिया, प्राकृतम जथा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे सामान्य मनुष्य के बच्चे को कोई बांध दे वैसे बांध दिया, लेकिन एक अद्भुत घटना घटी बांधते समय। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः द्वयंगुलो न भूते न संदध्यन्य च गोपिका। बारंबार गोपिका कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, गोपिका, जितना यशोदा कहते हैं उतना गोपिका कहते हैं। गोपिका, गोपिका का अर्थ है श्री कृष्ण की रक्षा करने वाली, या रक्षा का अर्थ है जो गोपन करे, कृष्ण की रक्षा करे। तो कृष्ण दुर्वृत्त न हो जाए, इसका आचरण खराब न हो जाए, तो खराब कर्म से, विकर्म से जो रोकना चाहती है बांध कर, डांट करके, उसको गोपिका का है। खिला पिला करके रक्षा करती है, पालन पोषण करती है, और बुरे स्वभाव से कृष्ण की रक्षा करना चाहती है, तो उसको गोपिका का। गोपिका ने सोचा कि आज मेरा बेटा दूध दही की चोरी कर रहा है, यार ऐसे मटका फोड़ रहा है, कल घर में आग लगा सकता है, राजमाखन चुरा रहा है, कल किसी के लड़के को चुराएगा, कपड़ा चुराएगा, परसों कुछ किसी स्त्री को का अपहरण करके भाग जाएगा, तब तो ये बहुत गलत बात होगी, इसलिए अभी से इसको बांध कर, डांट डपट करके और ठीक कर दे। तो कृष्ण की इस तरह से रक्षा करनी चाहती थी, गोपन करना चाहती थी, इसलिए सुखदेव गोस्वामी गोपिका गोपिका रट रहे। तो गोपिका तब बध्यमानस्य, जब अपने पुत्र को बांध रही थी, बांधने चली, क्यों बांध रही थी? लगता है कि सुखदेव गोस्वामी जब कथा कह रहे हैं तो महाराज परीक्षित का मन प्रसन्न नहीं था कि भगवान को बांधा जाए, वो नहीं चाहते थे कि भगवान को बांधा जाए। कथा के समय ऐसे बांधने चली तो उनका चेहरा कुछ और ढंग का हुआ, ये तो ठीक नहीं कर रहे। तब सुखदेव गोस्वामी कहते, कृतागस, अपराध किए थे कृतापराधस्य। तब महाराज परीक्षित को सांत्वना, हाँ बांधने का तो काम किए थे जब अपराधी हैं तो अपराधी को तो बांधा ही जाएगा। कृष्ण ने क्या क्या अपराध किया था? पहला अपराध तो ये किया था, मटका फोड़ा था, बहुत दिनों से दूध दही खाया हुआ मटका फूट गया, तो नया आवासने पर तो वो ज्यादा घी खाएगा, वो ज्यादा खाएगा। तो एक तो मटका फोड़ने का अपराध, ठीक है चलो उस पर भी वो मान गई होती, कम अपराध होता, उसका दही बहा, मटका फूटा दही बहा, और इसके बाद भागा, उखल को पलट कर उस पर से और संचित किया हुआ धन नवनीत छीट रहा था, फेंक रहा था, और वो भी बानरों को। बानर है, जब आदमी भी गलत काम करता है कोई लड़का तो उसको कहता अरे बानर तो साक्षात बानर का के साथ दोस्ती करना ये तो ठीक काम नहीं था। घर का सामान तोड़कर फोड़ करके और बानरों को इतना हेल्प किया जाए, जो बानर आज चश्मा भी लेकर भाग जाते हैं और मनुष्य के साथ द्रोह किया जाए, उनके घर चोरी की जाए और बानरों को खिलाया जाए, ठीक है बानरों की सेवा करनी चाहिए। हरिश्री जी कहते हैं कि भगवान चोरी भी कर रहे हैं तो दान करके खा रहे हैं, तो अच्छा गुण है, और खल के चरण में है, दुष्ट के उखल के चरण में, खल के चरण में है, लेकिन फिर भी दान कर रहे हैं। तो बड़ा व्यक्ति अगर दैववश कुसंगति में भी पड़ जाता है फिर भी उसका स्वभाव नहीं छूटता, खल के संग में है लेकिन दान कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से कोई दान करने लगे, अपने घर का सामान बिना मां से पूछे और भी बानर भालू को देने लगे, ठीक नहीं, ये अपराध हो रहा था, वो संचित माखन बर्बाद हो। तो उसके बाद और तीसरा चौथा अपराध हुआ कि भाग चला, अगर मां पकड़ने जा रही थी तो वहीं पर गिड़गिड़ा करके कहते गलती हो गई मां अब नहीं करूंगा, तब भी उसको दया आ गई होती। अब कान पकड़ता हूं आज से ऐसा नहीं करूंगा, तो मां थी क्षमा कर दी होती। लेकिन भागा भागा तो चाहिए था कि दो चार मीटर दस मीटर भाग करके फिर पकड़ में आ जाता, तो पूरे गांव में हैरान किया मां को, गांव से भी बाहर भागता रहा, इस तरह से भागता रहा। तो ये अपराध हुए थे कृष्ण से, तो इसलिए बांध दिया। तो सुखदेव गोस्वामी के हृदय का भाव यह है कि बांधा जाना उचित था, हम तो अपनी ओर से जोड़े कृतागस कृतापराध, अपराध किए थे इसलिए बांधा जाना उचित था। अथवा मां यशोदा के मन में बांधने की बात इसलिए बारंबार आ रही थी कि उसको इसके अपराधों की याद आ रही थी, और कृष्ण के अपराधों की याद आने का मतलब है कृष्ण की लीलाओं का धारावाहिक रील चल रहा था इसके मन में कि ये ऐसे फोड़ा, ऐसे भागा, ऐसे माखन छीटा, नहीं तो एक बार रस्सी घट गई तो फिर बांधती नहीं, परंतु बारंबार जो अपराधों का स्मरण चल रहा था वही मां को प्रेरित कर रहा था बांधने के लिए। और दूसरी बात यह थी कि आगे भी ये उत्पात करेगा, इसकी आदत बिगड़ती जाएगी, इसलिए बांधना चाहती थी स्व और भकर्ष्य। लेकिन इतनी बात है कि मां जो बांधने चली थी और बांध रही थी तो क्या मानकर बांध रही थी, अपना अर्भक अपना बच्चा मानकर बांध रही थी, हित के लिए बांध रही थी, बांधने में हित की भावना ही एकमात्र थी, और क्या भावना थी कि ये बिगड़ जाएगा, अपराधी हो रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, इसलिए बांधना जरूरी था। तो बद्ध मानस्य वर्तमान क्रिया का प्रयोग करके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बहुत काल तक बांधने का प्रयास करती रही, लेकिन जब ही प्रथम दाम उठाई, दाम रस्सी उठाई बांधने के लिए और पहले उखल में बांध ली उसके एक छोर को, ध्यान रखना चाहिए कि उस उखल पर, उस उखल से नहीं बांध रही है जिस उखल पर कृष्ण चढ़े थे, यह उखल ऐसे ही गिरा हुआ था, बहुत दिनों से रखा हुआ था, गिरे हुए उखल में बांधी थी। मां ऐसे खड़े उखल में नहीं बांध सकती थी कि बच्चा धक्का दे और उसके देह पर गिर जाए कहीं, अथवा ये सोचती होगी कि ये तो बहुत कमजोर बच्चा है, उखल पत्थर का गिरेगा नहीं। परंतु श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं वो दूसरा उखल था, पतित उखल था, वो गिरा हुआ था, तो उसमें बांधना आसान हुआ, गिरे हुए उखल के पास बांध दी कि यहीं पड़ा रहेगा कुछ देर तक, बहुत शीतल छाया में बांधी थी, धूप में नहीं, अभी तो धूप उगा भी नहीं था, या अथवा उग गया होगा, बहुत देर तक गांव में हैरान किए थे। तो बांध रही थी तो द्वि अंगुल ऊनम अभूत, ऊनम का अर्थ है कम, जैसे नी ऊनम न्यूनम, ऊन ऊन का अर्थ होता है कम। संस्कृत में आप लोगों ने गिनती सुना होगा, जैसे गिनाते हैं सप्तदश अष्टदश एकोनविंश, उन्नीस को कहते हैं एकोनविंश, एक ऊन बीस, एक कम बीस, एकोनविंश, उसको उन्नीस हिंदी में कहते हैं, गुजराती में अब भी विंस कहते हैं, एक विंस, बे विंस, द्वा विंस, विंस कहते हैं, विंस माने बीस, तो एक ऊन विंस, एक कम बीस, तो ऊन का अर्थ कम, तो द्वि अंगुल ऊनम अभूत, दो अंगुल कम हो गए। इसके विषय में आचार्यों की टीकाएं कुछ भिन्न भिन्न है, दो अंगुल कम हो गए इसका मतलब क्या है, श्रीपाद जीव गोस्वामी जी अर्थ करते हैं कि यहां दो अंगुल का कम है, कुछ कम हो गया, जैसे आप किसी से मांगते हैं कि जरा हमको दो चना दीजिए, दो चना दीजिए मतलब एक मुट्ठी दीजिए, उसका ये अर्थ होता है, दो चना दीजिए, दो रोटी खा करके आ रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि गिन करके दो ही रोटी खाना है। और कहीं आए हैं अगर कह दिया जाए कि वहां दो चार आदमी जुटे थे तो इसका मतलब कम आदमी जुटे थे, और दुनिया भर के आदमी जुटे थे कह दिया जाए तो इसका मतलब ज्यादा जुटे थे, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पूरा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया सब आदमी जुट गए थे वहां। तो ज्यादा भीड़ देखकर आदमी कहता है, अरे वहां तो दुनिया भर के आदमी जुटे थे, दुनिया में एक ही आदमी है। तो सुखदेव गोस्वामी इस भाषा का प्रयोग करते हैं कि दो अंगुल कम हो गया, वो थोड़ा कम हो गया और उखल में अट गया। उखल के बाद जो कृष्ण और उखल से दूरी हो रही थी वो भी अट गया। कमर में भी, मुट्ठी भर की कमर थी लाला की, उसमें भी लगभग अट गया, लेकिन जहां गांठ देने की बात आई, ऐसे घुमा करके लाई, तो वहां तो कुछ कम हो गया, दो अंगुल कम हो गए। कोई बात नहीं, मां को बांधने में उत्साह था, उसने अपने घर के रस्सी को मंगाया, संदधे अन्यच गोपिका, वह गोपिका अन्यत संदधे, तो दूसरी रस्सी मंगाई, मंगा रही है, वो जा नहीं रही है इसको छोड़ करके, नहीं तो छोड़कर जाने में तो कहां 9-2-11 हो जाएगा, ये तो भाग जाएगा। थोड़ी सी भी अगर छोड़ी होती तो फिर दोबारा हैरान किया हो, इसलिए छोड़ नहीं रही थी, वो पकड़े हुए थी और एक हाथ से पकड़ करके और तब रस्सी लपेट रही थी एक हाथ से। एक प्रश्न होगा कि रोहिणी जी कहां चली गई थी, उन्होंने क्यों नहीं मना किया। रोहिणी जी उस दिन उपनंद महाराज के घर गई थी, कोई उनको निमंत्रण था और ये चल रहा था इंद्र पूजा का अवसर, इसलिए वो गई थी, वो अध्यक्ष थी, वो चेक करने गई थी क्या क्या हो रहा है, सब तैयारी ठीक से नहीं चल रही है, क्या हो रहा है, नहीं तो वो रहती तो जसोदा बांध नहीं सकती थी, वो मना कर देते कि नहीं छोड़ दीजिए मत बांध, तो वो नहीं थी और बलराम जी को गोद में लेकर के गई थी। वो तो भक्त लोग कथा कहते हैं तो उनके मन में एक बलराम जी उदित हो जाते हैं, वो आते हैं कृष्ण के पास, अथवा उस समय आ गई होंगी बंधने पर, वो बलराम जी आ गए होंगे अपने माँ के साथ, लेकिन रोहिणी जी उस समय नहीं। तो माँ बांध रही है तो कृष्ण को प्रायः माँ जसोदा अपने गोद में रखती थी, पहले चुमती थी, सहलाती थी, लेकिन आज अपराधी है इसलिए उनको अपने गोद में सटने नहीं दे रही है, दूर से ही हाथ पकड़ करके और ऐसे लपेट रही है। और लाला तो ऐसा मुंह किया है मां पर देख रहा है, इसको क्या हो गया आज, कितना संबंध भूल गई, पत्थर हृदय का हो गई, और बारंबार रो रहा है बच्चा कि अभी भी दया आ जाए, अभी भी आ जाए, वो चाहता है कि गोद में चढ़ जाऊं, सट जाऊं, लेकिन मां तो ऐसा कठोर बन गई है कि आज कोई नाता नहीं, दूर से ही कमर में लपेटती है। तो घट गए तो फिर अपने घर की किसी दासी को पुकार कर कहती, अरे लाओ रज्जू, दूसरा रस्सी लाओ। तो वो बेचारी दौड़ करके गई कि रानी जी आज्ञा दे रही हैं, और वो बेचारी दासी समझती थी कि आज माँ में और पुत्र में इस तरह की बात छिड़ गई है, तो भी सोच रहे थे कि ठीक ही कर रहे हैं, इनके हित के लिए जरूरी है, इस बच्चे के हित के लिए जरूरी, तो वो भी खुशी के साथ रस्सी लाकर दे दे। वो जान रही है कि माँ जसोदा बड़े स्नेह से बांध रही है, तो ला करके दी। संदधे अन्यच गोपी, का गोपी ने फिर गांठ लगाया उस रस्सी से, जो रस्सी घट रही थी उस रस्सी में गांठ जोड़ा, और बहुत लंबी रस्सी, और इसको जब ही फिर उखल से आते हुए रस्सी में बांधना चाहा तो फिर कम हो गया, तो फिर घट गया, फिर बांधी, इस तरह सैकड़ों बार रस्सी मंगाई। और जब इस प्रकार का दाम बंधन हो रहा था तो धीरे 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 गोपियां जुटने लगी, क्योंकि पहले से भी जानती थी, जब गली में कृष्ण भाग रहे थे तो सबके घर में हल्ला हो गया था कि आज कृष्ण भाग रहे हैं और जसोदा खदेड़ रही है, तो सब ये भी बात धीरे धीरे फैल गई कि उनको वो बांध रही है, उनको बांध रही है, तो सब देखने के लिए आ गई थी, देख रहे थे, बहुत प्रसन्न थी सब। तो जदासित तदपि न्यूनम, जब गोपी ने दूसरी रस्सी लगाया तो वो भी न्यून हो गई, तेनान्य दपि संदध है, इस कारण से उसने दूसरी रस्सी लगाई, तीसरी लगाई तो वो भी घट गई, तदपि द्वि अंगुलम न्यूनम जब जदादत्त बंधनम, जो जो बंधन लगाई, बंधनम में, बंधनम माने रस्सी, रज्जु बध्यते अनेन इति बंधनम, जिससे व्यक्ति बंध जाए उसको बंधन कहते हैं, यहां बंधन का अर्थ है रस्सी। जद जद आदत्त बंधनम, जो जो बंधन उठाई, जो जो रस्सी उठाई, तत्त न्यूनम अभूत, ओर कम हो गए। एक प्रश्न होता है कि ऐसा अद्भुत काम हो रहा था, रस्सी घट रही थी तो जसोदा को शंका नहीं हो रही थी, फिर वो क्यों लंबी लंबी रस्सी फिर जोड़ रही थी? एक आश्चर्य की बात, मां को कुछ विस्मय हो रहा था लेकिन उसके मन में बांधने का इतना दुराग्रह था कि घटती हुई रस्सी पर वो विचार नहीं कर रही थी। उसको चाहिए था कि सोचे कि क्या बात होगी, क्यों रस्सी घट गई, लेकिन इस पर विचार नहीं करती थी, दूसरी रस्सी लाओ, दूसरी रस्सी लाओ। और बाद में जब रस्सी घटने लगी तो मां ने कहा कि एक साथ 100 रस्सी लाओ, वो बिल्कुल जिद में हो गई थी, बांध करके रहूंगी। और गोपियां हंस रही थी और वे रानी जी से कहने लगी, रानी जी ललाट पत्र में इसका बंधन नहीं लिखा है, लगता है कि इसका बंधन नहीं लिखा है, तो आश्चर्य हो गया। तो गोपियां भी ला ला करके रस्सी दे रही थी, तो पहले तो अपने घर की जितनी रस्सियां थी खत्म हो गई। एवं स्वगेह दामानी जसोदा संदधत्यपि, स्वगेह दामानी शब्द बता रहा है कि अपने घर की रस्सी सब खप गई, और जो ओरिजिनल रस्सी थी पहली बस उतनी ही रह गई, गांठ जोड़ा जाता था और बांधते समय सब समाप्त। कारण क्या था, क्यों नहीं रस्सी पूर्ण हो रही थी, क्यों नहीं बंध रही थी? श्रील चक्रवर्ती पाद जी लिखे हैं कि जब भगवान को बांधने के लिए गोपी प्रयास कर रही है तो भगवान की जो नित्य शक्तियां हैं, खास करके उनकी विभूता शक्ति और अपरिचिनता शक्ति, दो शक्तियां दो अंगुल कम करा रही थी। जो सर्वव्यापक है वो तो कैसे बन सकता है, सर्वशक्तिमान है जिसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, अपरिचिन है, उसमें बंधन कैसे लगेगा? तो आज तक भगवान पर बंधन नहीं लगने दी थी शक्तियां, कभी भगवान नहीं बांधे गए थे, और मां जसोदा आज बांधने पर पड़ी हुई है, तो शक्तियां बार बार उदित होकर के कम कर रही थी रस्सी। रस्सी देखने में पहले बांधने के पहले लंबी दिखती थी, लेकिन गांठ देने पर घट करके फिर उतना ही उतना ही। तो आश्चर्य हो रहा था। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सुस्मयंती नाम स्मयंती, यशोदा भी मुस्कुरा रही थी, विस्मय कर रही थी, वो कोई दुखी नहीं थी, नहीं बंध रहा है, बांध करके रहूंगी, तो कुछ मुस्कान भी आ रही थी, अथवा स्मय विस्मय हो रहा था, आश्चर्यचकित हो रही थी। और भी गोपियां आकर के मुस्कुरा रही थी कि आज तो छिड़ गई लड़ाई मां और पुत्र में, ये बंध नहीं रहा है, ये बांधने से मानती नहीं है। तो गोपियों ने कहा कि रानी जी आपके पुत्र के ललाट में बंधन नहीं लिखा गया है, छोड़िए अब इसको खिलाइए पिलाइए, आप भी दूसरा काम कीजिए, क्या जिद में आ गई है। तो मां कहती है चाहे शाम हो जाए बांधते बांधते, लेकिन बांध करके ही रहूंगे, जाओ अपने घर की रस्सी लाओ, तुम भी लाओ अपने घर की रस्सी। रसिया मिलत नहीं खे गोकुला नगरिया में, रेशम के डोरिया में रस्सी नहीं मिल रही थी, बारंबार गांठ लगा रही थी, बांध रही थी, बांध रही थी, लेकिन गोपियां हंस रही थी, विस्मय हो रहा था। ये विस्मय इस बात का हो रहा था, गोपियां क्यों विस्मय कर रही थी, आश्चर्य कर रही थी, तो विस्मय कर रहे थे कि लाला की जो कमर है कटी है वो मुष्टि प्रमाण है, वो मुट्ठी भर है, 3 बरस का बच्चा है, पतली कमर है छोटी सी, तो कमर न तो बढ़ रही है कमर बढ़ नहीं रही है, जितना उसका प्रमाण है उतना ही है, और चलो ज्यादा न मोटा हो रहा है ना पतला हो रहा है, जैसा है वैसा है, और कितनी कितनी रस्सियां जोड़ दी गई और फिर भी रस्सी घट रही है, क्या बात, रस्सियां कहां चली जा रही। अच्छा उस ओरिजिनल रस्सी में जो रस्सी जोड़ी जाती थी तो यह भी होता कि चलो वो रस्सी जो है मोटी होती जाए तो इसका मतलब कि वो खा रही है, उसमें और रस्सियां सूखती जा रही है, तो वो ज्यों कहते हैं पतला सूतरी वो वैसा ही था, हमारे यहां सूत्री कहते सूत्र और सूत्री, जो सूत्री पतले रस्सी को कहते, तो जो ओरिजिनल रस्सी थी वो जेव की, तो उसमें भी कोई मोटाई नहीं बढ़ रही थी और न लंबाई बढ़ रही थी, ये आश्चर्य हो रहा था। या दूसरा आश्चर्य गोपियों को यह भी हो रहा था कि आज माँ को हो क्या गया, जब नहीं बन रहा है तो ये बांधने पर क्यों पड़ी हुई। परंतु ये जो दृश्य था बहुत अच्छा था, इसलिए गोपियों को भी सुख मिल रहा था, वो लोग भी घर का काम नंदा छोड़ करके ये देख रहे थे, उनको अच्छा लग रहा था। और किसी किसी को और भी अच्छा लग रहा था कि आज से लाला की आदत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, अब इस तरह के तोड़फोड़ नहीं कर पाएंगे, तो विस्मित हो रहे थे। कृष्ण बंध नहीं रहे थे, पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अंत में बंध गए। स्वमातु स्विन्न गात्राया विश्रस्त कबर स्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया शित्स्व बंधने। स्वमातु परिश्रमं दृष्ट्वा, अपने माँ का परिश्रम देखकर श्री कृष्ण बंधन में आ गए। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण, उन्होंने देखा कि माँ बहुत परिश्रम कर चुकी है। एक तो मैं इसको हैरान किया, गली में गांव में इधर उधर भागा, इसके बाद रस्सी जोड़ रही है, बांध रही है, बारंबार रस्सी लाना मंगाना जोड़ना, लगभग दो पहर से ज्यादा समय इसी में हो गया, परेशानी हो रही थी। तो स्विन गात्र आया, उसके गात्र में स्विन पसीने भर गए, कभी मेहनत नहीं की थी लेकिन आज इतना मेहनत की। शुरू में दही मथ रही थी, फिर गली में भगाया और फिर गांठ दे रही थी बारंबार। अच्छा, गांठ नहीं पड़ रही थी इसी से परिश्रम हो रहा था, ऐसी बात नहीं है। ये बंध नहीं रहा था तो मानसिक बेचैनी हो रही थी। कोई काम आदमी करे और कार्य में सफलता न मिले तो मन में बेचैनी होती है, तो ये भी एक परिश्रम है। तो अपने स्वमातु, अपनी माँ का परिश्रम कृष्ण ने देखा। बहुत ही सुंदर शब्द है विचारणीय, भगवान क्यों बंध गए और क्यों नहीं बंध रहे थे, क्यों दो अंगुल रस्सी कम पड़ रही थी। दो अंगुल रस्सी कम पड़ रही थी, इसके विषय में श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं दो चीज की कमी अभी थी। माँ के परिश्रम की पूर्णता नहीं हुई थी, उसने मेहनत अभी खूब नहीं किया था, और इसी कारण से भगवान की कृपा उदित नहीं हो रही थी। ये दो कमी पड़ रही थी, ये बिल्कुल स्वाभाविक। तो जब सारी शक्तियां लगी हुई थी, हम ब्रह्म को बंधने नहीं देंगे, हम परमेश्वर को परमात्मा को बंधने नहीं देंगे, सारी शक्तियां मिली हुई थी, तब तक भगवान के हृदय में समस्त शक्तियों की पटरानी कृपा शक्ति, भास्वती कृपा शक्ति, सबसे तेजस्विनी शक्ति हृदय में उदित हुई और भगवान के हृदय को पिघला दी और सारी शक्तियां सकपका गई, तो कृपा उदित हो गई। कृपा शक्ति जो है भगवान की समस्त शक्तियों की रानी है, और सारी शक्तियां एक तरफ, पर भगवान के हृदय में यदि कृपा उत्पन्न हो जाए तो वो अब ये याद नहीं रहता है कि मैं ईश्वर हूं, भगवान हूं, ये हूं, वो हूं। तो भगवान की कृपा महारानी जब हृदय में उदित हुई तो सब शक्तियों ने हाथ जोड़ दिया, तो अब तो ये बंध ही जाएंगे। तो उस रानी जब उदित हो गई हृदय में तो और दासियां क्या कर सकती, तो और शक्तियों ने हाथ जोड़ लिया और भगवान बंधन में आ गए। कृपया सित स्व बंधन, माँ के तरफ से परिश्रमम और भगवान के तरफ से कृपा, ये दो 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 के कारण बनते हैं भगवान है। इसलिए भगवत भजन में, कृष्ण की सेवा में, उनसे प्रेम करने में डट कर परिश्रम करना चाहिए। केवल एकांत में बैठ करके कुछ लोग केवल जप करना चाहे तो जप तो करें, लेकिन खड़े होकर के जप करें खूब डट करके, जैसे ध्रुव महाराज ने किया था। ऐसा नहीं बैठ करके जप कर रहे हैं और एक घंटे में 500 बार झपकी ले रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम, सो रहे बीच बीच में, ऐसे थोड़े भगवान मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। यदि झपकी आ रही है तो ध्रुव महाराज की तरह खड़े होकर के जप करना चाहिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।